वो कहीं दूसरी जगह नहीं, यहीं पर बैकुंठ और ब्रज ये प्रकट इत्यादि इसीलिए बनाए गए हैं ट्रेनिंग के लिए। वृंदावन जो धाम है ये सर्वोपरि है, ये भी अप्रकट और प्रकट दो भागों में है। यहाँ पर जैसी आपकी ट्रेनिंग हुई साथ ही साथ उसमें पहुंचते चले जाएंगे, अप्राकृत ब्रज में पहुंचते जाएंगे। यहाँ कुछ साधन भी है किंतु उस अप्रकट जगत में साधन नहीं है। यहाँ पर परिपक्व हो लेंगे, यहाँ पर जन्म होगा और इसके बाद में अभी बिना जन्म के पहुंच रहे हैं, अभी काली हृदय और ये सब को देख रहे हैं, निधुवन को देख रहे हैं, सेवा कुंज देख रहे हैं, किंतु अनुभूति क्या है?
ऊपर की
अभी देख रहे हैं, बहुत अच्छा, वहां की धूली लेकर के सिर में भी चढ़ा रहे हैं, किंतु रही है तो वहाँ अभी शरीर नहीं बना है, भाव नहीं बना है कुछ। अरे
एक तो जन्म में ये पूछा था कि खाली महामंत्र संबंध नहीं जगा सकता, जो हमें मंत्र की आवश्यकता पड़ती है।
अभी नहीं जगाएगा, जिस हल से और खुरपी से जमीन खोदी जाएगी वह काम सोने और मणियों से नहीं होगा।
जो काम दिया उसके लिए तो लोहे का मोटा वो ही चाहिए, अब वहां छोटे कुर्सी वाला काम नहीं चाहिए। तो दुकान खोलनी हो लेकिन जिस समय दुकान खोलने
की सोने की खुरपी भी बनाएंगे तो वो भूत ही हो जाएगी।
तुम्हारे महामंत्र में तो सारी शक्तियाँ नहीं, जो गायत्री मंत्र में वो सब शक्तियाँ, महामंत्र में वो सब शक्तियाँ
है तो उसी चीज को चमकाने के लिए। आखिर खेती करेंगे तो उसे क्या मिलेगा? अन्न। अन्न से क्या मिलेगा? अर्थ। अर्थ से सोना मिलेगा। अतः वो तो खुरपी सोना स्वयं ही है, उसको भूति क्यों कर रहे हो? झूठ मूठ का समय बर्बाद कर नीचे से चलिए, जो जिसकी जहाँ जरूरत है उसको लेकर के चलिए, तब आप हरिनाम की महिमा समझेंगे। हरिनाम शुद्ध रूप में आपके हृदय में, तब राधा और कृष्ण को आप देखेंगे।
उत्प्रेरक का काम करता है
अभी हरिनाम, दोनों काम करता है, साधन का भी काम करता है, किंतु साधन के लिए उसको हम क्यों बेकार का उपनाधिक लगाएं? पहले जिसकी जरूरत है, बिना संबंध के नाम काम नहीं करेगा, इसलिए संबंध भी जरूरत है। पहले तो समझिए, जैसे गोविंद जी कौन है, कृष्ण कौन है, गोपीनाथ जी, गोपी जी, वल्लभ जी कौन है, हमारा किससे संबंध है, क्या है? धीरे धीरे आत्मा उन्नत होती जाएगी, ये सब होगा साधु संग में, उन्नत साधु संग में। यदि उन्नत साधु संग नहीं होगा तो नाम के द्वारा आपको मुक्ति ही मिल जाएगी, धन संपत्ति रुपया पैसा मिल जाएगा। आप ऐसे ही करते रहिए हरिनाम, देखे जो पैसा आने लगता है, प्रतिष्ठा आने लग जाएगी। जब इसको छोड़ देकर तो ऊपर उड़ जाएंगे, जिसकी जरूरत नहीं है, तो मुक्ति तक भी आएगी। और जो योगाभ्यास के द्वारा अणिमा लघिमा और ये सब जो मुक्तियां होती हैं, आकाश में विचरण करना इत्यादि, जिसको जो कह दिया वही पूरा हो गया, ये सब चीज अपने आप आ जाएंगे। हरिदास ठाकुर जो कह दिया बस वही, उसके लिए जरूरत कोई साल, और जब इसे भी ऊपर उठ जाएंगे, जब इसकी भी जरूरत नहीं होगी, तो राधा कृष्ण। इसलिए पहले मंत्र नाम दोनों में, गुरु में, वैष्णव में, भगवान में प्रेम और रति हो, इसलिए वो श्लोक याद रखना चाहिए। गुरु गोष्ठे गोष्ठालय सुजन, नहीं हो तो मन ही मन में उसको उसका भाव याद रख। वेद शास्त्र पढ़ने की, हम लोग वेद शास्त्र नहीं पढ़ते हैं, नाम के महिमा से और भक्ति के महिमा से अपने आप ये सब उत्तर, वेद शास्त्र सब अपने आप स्फूर्ति होने लगता है, पढ़ने की कोई जरूरत। हरिदास ठाकुर कहाँ पढ़ा, गौर किशोरदास की, हम भी कहाँ वेद पढ़े हैं, शास्त्र पढ़े, किंतु थे बातें वेद शास्त्र। अब भजन खुद नहीं करेगा, लाख रटेगा पढ़ेगा जीवन भर, वेद को उच्चारण सीखा है, कैसे स्वर से बोलते हैं, कैसे उच्चारण करते हैं, किंतु उसे उतना फल नहीं होता। कुछ न करे, चुपचाप हरिनाम करता है, देखो जैसे क्या होता है, उस दिन में उसका सब कुछ उसमें शक्ति संचरित हो जाएगी।
हाँ जी, ऐसा कई बार अनुभव होता है वैसे भी, कई बार जब हम लोग यदि हरिनाम सीखना से करें तो जब भी कथा भी वाचनी हो कुछ करना हो तो अब ना भी यदि कुछ अध्ययन किया हो तो अपने आप प्रेरणा से गुरुजनों वैष्णवों का ध्यान करने से अपना आप प्रेरणा मिलती है।
सुन रही है, कुछ असर हो रहा है, करते 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 सब डर भय समाप्त हो जाएगा, एकदम निर्भीक मीरा जैसी बन जाएगी। अभी समाज का डर है, सबका, घर का, उधर का, इधर का, अभी साजी नहीं छोड़ेंगे ये। कहते कहते अभी नाम हरि नाम करना आरम्भ कर दो खूब जोर से, धीरे 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 सब। अब क्या करेगी
आप? जल्दी
पंकज जी को हाथ जोड़ना, कहना जी आपने इतनी बड़ी कृपा की, अब हमको अपने जो आराध्य देव हैं कृष्ण और राधा जी उनके चरणों में हमारी रुचि लगाई, शंकर जी प्रसन्न होकर के आपको ये करा दें। और हरिनाम जो करेंगे समझेंगे समस्त जितने भी जगत में साधन है ये सब का सार है। वैष्णो देवी जाने में कोई हर्ज नहीं है, जाओ पैसा कुछ लग जाए वैसे काम में तुम्हारे पैर भी चलेंगे। वैष्णो देवी को राधा जी समझो, वैष्णव की आराध्या देवी है इसलिए वैष्णो देवी कहलाती है। लोगों ने उसको गड़बड़ समझ रखा है, उनको चंडी और दुर्गा ये सब मान लेती है ना? और राधा जी का स्मरण करते हुए जाना और मंत्र अपना हरे कृष्ण हरे कृष्ण यदि जाने की इच्छा है। कुछ पैसा जब है तो कुछ पैसा तो खर्च होना है, कुछ पैसा खर्च करना चाहिए तो ऐसे काम में हो, फिर धीरे धीरे होगा जैसे नहीं इसको भगवान की सेवा में वैष्णवों की सेवा में लगाए तो धीरे 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 सब चित्त की वृत्तियां बदलती हैं। किसकी तबीज है? कि उस ताबीज में जितनी शक्ति थी उससे करोड़ों शक्तियां, उसमें जो शक्ति सब तुलसी जी में आ गई। तुलसी जी सबकी जननी है, जितनी सिद्धियां हैं, जितनी ताबीज है, ताबीज के मंत्र हैं, माई इत्यादि सबकी जननी है। तो अभी रखना चाहते हैं कुछ दिन रख लो, इसके बाद में अभी तुलसी का व्यवहार करते चलो, फिर जैसा तुलसी जी कराएंगे वैसा ही
होगा।
अभी अभी रखो, जब जब तक कि तुम्हारी पूरी श्रद्धा उसमें है तब तक रखो। जब पूरी तुलसी में आ जाएगी, भगवान राधा कृष्ण में आ जाएगी तो अब उस समय जो इच्छा होगी उस समय कर, अब अभी रहने दो। अभी उसको भी लगाते और व्यवहार करते चलो। क्यों क्यों
ऐसे
ही पड़ा रहने दो घर में, पढ़ना इच्छा हो तो पहन लेना, नहीं तो नहीं, उसे कुछ उसको आभूषण के रूप में पहन लेना, ये सोने का आभूषण है, पहन लेना कोई बात, उतारने से क्या उसमें अच्छा रहेगा, कोई कोई कभी जरूरत हो तो उसको पैसे में भी पुना लेगी और उसमें से सौंदर्य तुम्हारे शरीर में उसका कण जाएगा, इसे लाभ है, इसमें कोई हर्ज भी नहीं है, नुकसान भी नहीं है, अपना पहनते रहो किंतु राधा कृष्ण के रूप में चलते चलते।
बोलते हैं कि पता नहीं, कुछ ऐसा
किसी
ने बोला कि नहीं,
हम लोगों ने, हम लोग आज तक जीवन में पहने नहीं, किसी को परामर्श नहीं दिया, हम लोग ऐसे ही चलते हैं। हमारे यहाँ तुलसी है, हाथों में तुलसी है, मन में भगवान है, राधा कृष्ण है, इसलिए कोई जरूरत ही आज तक नहीं है। जब तुम इस आधार में पहुँचेगी तब तुम्हारा भी ऐसा, अभी तक जो चल रहा है उसको ऐसे ही चल।
गीता में एक श्लोक आया है ना कि मैं जो लोग जिस पिता की पूजा करते हैं मैं उसमें उनकी और निष्ठा बढ़ाता जाता हूँ। महाराज जी वहाँ व्याख्या में आपने लिखा है विश्वनाथ चतुर्थी पादी जी में, तो ये प्रश्न होता है कि क्या देवी देवता कृष्ण में निष्ठा नहीं बना सकते, तो उसने क्या जवाब दिया है, अरे भगवान कृष्ण स्पष्ट तो कह रहे हैं वो अपने में निष्ठा नहीं बढ़वा सकते हैं, तो कृष्ण में निष्ठा कहाँ बढ़ा सकते हैं। देवी देवता में भी किसी व्यक्ति के अंदर जो निष्ठा जाती है वो देवी देवता खुद अपने में नहीं करवाते हैं, वो कृष्ण करके देते हैं। क्या बढ़िया पॉइंट है,
समझती है, इसको समझाओ। लेक्चर
में
आने से क्या होगा जब तक अच्छी तरह से नहीं समझेगा, तो देवता भी कुछ नहीं कर सकते, उनमें भी इतनी शक्ति है।
आपने एक बात बताई है, लेकिन कहते हैं कि भगवान तो तुम्हें कभी पनिश नहीं करता तुम्हारे पूर्व जन्मों के कर्मों का फल, लेकिन फिर क्यों ये कहा जाता है कि देवी देवता भी पनिश करते हैं, उनको सजा देते हैं?
किनको?
देवी देवता हम,
अरे गांव का चौकीदार है वो भी तुमको रिपोर्ट तुम्हारे विरुद्ध लिखवा देगा, जो गवर्नमेंट की आलोचना कर रहे थे विरुद्ध, तो तुमको ऊपर से
सजा मिलेगी।
सजा मैंने अभी दरोगा बुला करके दो चार कोड़े लगा देगा। सिर्फ चौकीदार में भी इतनी शक्ति है, तो ये लोग भी तो चौकीदार हैं भगवान के, इनमें भी भगवान ने कुछ शक्ति दी है, इसलिए इनका भी निंदा और ये अवज्ञा मत करो, ये अपने रास्ते पर चलो। अब हम लोगों को चौकीदारों से क्या जरूरत है, हम लोगों को जब भी बादशाह से ही जो मालिक है, सबके प्रेसिडेंट हैं, प्रधानमंत्री हैं, वो लोग हमारे से हैं, तो ये सबसे मतलब, तो तभी उनको भी उनको आ गए, बहुत अच्छा हुआ, अच्छी रिपोर्ट वहां पर देंगे, वो भी खुश हो गया,
ये लो कृष्ण का प्रसाद
है बस ऐसे।
इसका पहले अमेरिका में बात हुई थी कि साइंस में इतनी ज्यादा तरक्की की, जब डेड बॉडी जाने लगी तो साइंस ने वो जो उस बॉडी को इतना शीशे से सब चीजों से इतना कैद करके रखा, वो
क्या निकलता
जो वो चीज
है वो कैसे बाहर निकल के जाता है, वो पदार्थों किसी भी पदार्थ के अधीन नहीं है,
वो शीशा क्रैक वाली भी बात नहीं है,
सीखने
उसके बिना भी चला जा सकता है
और वो ये प्राण वायु।
यदि सुनो, यदि शीशे के बाहर से भी भीतर में ठंडा आ सकती है, जो ठंड को नहीं रोक सकता, गर्मी को नहीं रोक सकता है जो शीशा, वो आदमी को क्या, या रोशनी को नहीं रोक सकता, वो क्या वो आत्मा को रोकेगा?
ये सब अफवाह फैली हुई है, किसने वो आर्टिकल देखे?
हाँ, तभी ये साधारण लोगों को समझाने के लिए ठीक है।
लेकिन सच्चाई भी है कि तुम आत्मा को देख नहीं सकते, परमात्मा
आप पूछते थे
नहीं, हम ये पूछे थे यहाँ पे बंगालियों का वो दुर्गा नवरात्रि आती है तो दुर्गा पूजा बहुत बड़ी होती है डाउन टाउन में, तो हम लोग जाते हैं वहाँ,
वो रिक्रिएशन है, उसमें पूजा का कोई भी मतलब नहीं है, केवल अपने आप मिलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, मनोरंजन करते हैं, नाचते हैं, कूदते हैं, शराब भी पी लेते हैं, मांस भी खा लेते हैं, दुर्गा का पूजन से कोई भी संबंध नहीं, वो समय जाना व्यर्थ है। तुम अपने घर में बल्कि राधा जी की या उनकी पूजा करो, वो बहुत बहुत तुम शुद्ध रूप से करेंगे, वो नहीं करेंगे, वो सामाजिक चीज नहीं, क्या अरे देखो हमारी पूजा में नहीं आए और $50 भी नहीं दिया, $10 भी नहीं दिया, ये देख तुम $10 देना होगा दे देना, और न देगी तो और अच्छा है।
पर वो क्या करते हैं कि बड़ी बड़ी उनकी बीजी होती है, पर कृष्ण जी के वो छोटे से दिखाते हैं,
वो तो दिखलाने के लिए भारतवर्ष में बैठाते, कृष्ण को बैठाते भी नहीं,
तो हम जो जाते हैं वो कृष्ण जी के लिए जाते हैं।
तुम्हारे घर में तो कृष्ण है, वहाँ पर जाने की क्या जरूरत है, वो दो एक डॉलर, पांच डॉलर, दस डॉलर उनको दे देना, तड़का देना, एक घंटा से बोल रहा
हूँ,
दिवाली खूब जोर से चलाना, राधा जी और कृष्ण प्रकाश जरूर, दिवाली जरूर मानना, राधा कृष्ण
की पूजा,
राधा कृष्ण की, गोवर्धन की पूजा, जाओ गिरिराज जी की पूजा करना, दिवाली जरूर मानना,
गोवर्धन पूजा हम लोग करते हैं,
नहीं है ऐसे गोबर का बना लेना, हाँ हाँ, गिरिराज जी को कृष्ण ने उठाया, उन्होंने सारी लोगों की मनोकामना पूर्ण कर दी, बस आप रोगी हो रहा है, उसको कैद दस्त हो रही है, तो वहाँ पर पानी पीना चाहिए कि नहीं?
नहीं,
क्यों कहाँ दिखाई कहाँ दिखाई पड़ता है?
दिखाई नहीं पड़ता लेकिन फैला तो रहता है।
कीड़ा होता है उसमें?
बहुत ज्यादा।
हम समझते कि उस व्यक्ति से तू घृणा करके पानी नहीं पीती, ऐसी बात नहीं है।
और बीमारी न फैले और प्रॉब्लम न बढ़े।
एक दूषित हृदय का व्यक्ति है, उसके विचार शुद्ध नहीं है, ये भी संक्रामक व्याधि है कि नहीं? आदमी समझते ही नहीं है। एक आदमी दूषित विचार का चोर डकैत बदमाश और व्यभिचारी है, व्यभिचारी समझती है, और उसके साथ में बैठ करके खाओ, वो उसके साथ में लाइन में बैठ करके खाने से भी उसके जो ये दुर्गुण है हमारे हृदय में आ जाएंगे, तुमको समझ में नहीं आएगा।
साथ में बैठ के खाने,
हाँ, इसलिए जब तक की सजातीय न हो, भाव ऊंचे न रहे, तब तक मत खाओ उसके हाथ का। ये घृणा नहीं है। जैसे कलरा रोगी यदि आपको पानी दे रहा है उस समय पिएंगे, उसके श्वास से उसके हवा से विषाक्त हो चुका है, दिखता नहीं है, और यदि नहीं लेंगे तो वो बड़ा रुष्ट होता है, तो रुष्ट होने दो, वो नहीं जानता है। ऐसे ही विचारों का जो दूषण है ये डायरेक्ट दोषण से कोटि गुण अधिक है, आदमी नहीं समझते हैं, उसका हृदय विकृत हो जाता है। इसलिए जब विकसित होता है तो वो बना करके जब देगा, उसको कुछ ज्ञान हो गया, तत्व हो गया, बुराइयां हट गई, तब एक क्रोधी आदमी का बनाया हुआ तुम खाओ, एक बेस्या का बनाया हुआ कुछ खाओ, क्या होगा? उसके दुर्गुण तुम्हारे अंदर में जरूर आने के लिए बाध्य है। इसलिए आदमी संत पुरुषों के यहाँ जाता है जिसके अंदर में कोई बुराई नहीं है, हृदय निर्मल है, भगवत भक्ति की धारा प्रवाहित हो रही है, अपने आप उसकी सुगंध, कुछ नहीं सुनो कुछ नहीं कहेगा तो भी वो अपने आप सब आ जाता है। इसलिए सब पुरुषों का संत। इसलिए हम लोग ब्राह्मण कोई हो उसका भी बनाया हुआ रसोई नहीं खाते, और एक बेधर्मी भी हो, मुसलमान भी हो, क्रिश्चियन भी हो, ईसाई भी हो, कोई भी हो, कोई भी हो, यदि वो उस चीज को ग्रहण करके भगवान का नाम ग्रहण करने लगा और अपनी बुराइयों को छोड़ दिया, वो चाहे डोम या कोई भी किसी भी जाति शूद्र जाति का भी है, तो वो अब शूद्र नहीं रहा, वो ब्राह्मण बन गया। और ब्राह्मण कदाचार करता है, शराब पीता है, उसमें बुरी बुरी बातें हैं, तो ब्राह्मण होने पर वो उसको हम ब्राह्मण नहीं मानते हैं। हम गुणों के अनुसार में विचार करके यदि भगवान का भजन करता है तो उसके हाथ से जो कुछ भी दे देगा, और यदि वो चीज नहीं है तो अपनी मैया का भी हाथ का रसोई बनाया हुआ हम नहीं लेंगे। हमारे पिताजी हमारे पास में मथुरा में एक बार आए, हम लोग त्योहारी ब्राह्मण त्रिवेदी समझती है ना, और कान्य कुब्ज गोत्र वाले और सब ब्राह्मणों से बहुत ऊंचे, सब ब्राह्मणों से ऊंचे हम लोगों का था। तो एक बार मथुरा में आए तो पहली बार तो उन्होंने देखा जैसे सब एक साथ में प्रसाद पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम प्रसाद नहीं पाएंगे। मैं समझ गया वो समझ रहे हैं कि ये ब्राह्मण नहीं है, ये कौन जाति का कहाँ का क्या है, और यहाँ पर आए हुए हैं, हम उन लोगों के साथ में नहीं बैठ करके पाए। तो मैंने कहा जैसे आप रसोई अपने आप बना लीजिए और पाइए भगवान का भोग दे करके। तो उन्होंने वैसे ही किया। और इसके बाद में जब हरी कथा सुनी जो आप लोगों को बतला रहे हैं, गुण ब्राह्मण का होता है, जो ब्राह्मण होकर के रावण का काम करे तो राक्षस कहलाएगा। रावण ब्राह्मण का लड़का था, ऋषि का लड़का था, किंतु कैसा दुराचारी था, इसलिए उसको राक्षस, उसका छुआ हुआ पानी नहीं पिएंगे ब्राह्मण होने पर भी। और विदुर जी क्या जाति थे? विदुर बतलाओ, वो किससे जन्म उनका हुआ? जाति जब देखो तो शूद्र, किंतु जो उनको शूद्र कहेगा वो अपने धर्म से भ्रष्ट। वो ब्राह्मणों के भी सन्यासियों के भी गुरु हैं, है ना? नारद जी कौन जाति हैं? वो भी शुद्ध हैं, किंतु अब उनको शुद्र कहने से वो तो भगवत स्वरूप हो गए हैं, जाति पाति से ऊपर शुद्ध आत्म तत्व हो गए, भक्त हो गए। इसलिए ऐसी दीक्षा जिसको हो उसके हाथ से खाएंगे तो उसके दो गुण चले जाते हैं, शुद्ध चित्त हो जाता है। इसलिए पिताजी जब यह सब सुना कुछ दिनों के बाद में, 10-5 दिन रहे, एकदम बदल बोले जब मैं इन लोगों के साथ हूँ, नहीं हम आपको नहीं खाने देंगे, आप अलग बने। उन्होंने देखा कि यहाँ पर ब्राह्मण लड़के इतने वेद के उपनिषद के विद्वान, ठाकुर जी का रसोई पीते हैं, बीड़ी सिगरेट पान तंबाकू कुछ नहीं, चाय नहीं लेते। हमने कहा जी अभी तो आप बीड़ी पीते हैं, ये लोग तो बीड़ी भी नहीं पीते, सिगरेट नहीं कुछ नहीं, तो बतलाइए कौन श्रेष्ठ है, ब्राह्मण आप हैं कि ये है। ब्रह्म जानाते तो ब्राह्मण को, ब्रह्म को जानने वाला। बस एकदम बदल गए। उन्होंने कहा जी हमको हरिनाम दे दो, आप हमारे लौकिक देश से पिता हैं, मैं सन्यासी होने पर भी आपके चरण की मैं वंदना करता हूँ कि हमारी आपने हमारा पालन पोषण किया, मैया ने हमारा, इसलिए आप लोग तो हमारे माता पिता जी जन्म के तो है ही है। मैं उनको चरण छू करके प्रणाम करता था, कहा जी अब मैं समझ गया अब तुम हमारे पूज्य हो गए। तो उनको हरिनाम की माला दे दी, तुलसी पहना दी, गायत्री मंत्र दे दिया, पहले से करते थे वैष्णव थे, मैंने गोपाल मंत्र और सब मंत्र उनको दे दिया, मैया को भी दे दिया, और पूरा परिवार अपना भजन भी करता है। अब उनके हाथ का जो कुछ बनाते हैं खाता हूँ, इतनी फर्स्ट क्लास दाल पूरी बनाती है जो हमको अभी तक सुगंध और उसका टेस्ट मुख में लगा है। दाल अरहर की बनती थी, उसमें घी एकदम ताजा छौंक देते, वो पर्ल की भांति मोती की भांति उस पर तैरता रहता और सुगंध चारों तरफ में फैल जाती है। एक कड़ाही पानी दे दिया, दो चार बड़ियां दे दी, बड़ी समझती है ना, कढ़ी वाली नहीं, उड़द की बड़ी से बनती थी, इतनी टेस्ट, एक कड़ाही पानी और दो चार बड़ी उसमें भून करके और उसमें दाल, इतना ये सारा घर एकदम कम। अब तो दाल में न सुगंध है, न कुछ है, न टेस्ट है। तो इस तरह से तुम लोग समझो, इसलिए पहले तुमको पवित्र बनाएंगे, हरिनाम करो, अपने ब्राह्मणत्व में तुम प्रतिष्ठित हो, काम क्रोध लोभ मोह दूर चला जाए, और हमारे लिए सात बनाएगी विदुर का झट हमारे लिए। अब जाति पाति का बखेड़ा हमारा नहीं रह गया, अब हमारा हो गया गुणों पर, चतुर वर्णम मया सृष्टम, भगवान ने चारों ये सब वर्ण बनाया है शरीर के ऊपर में नहीं है, गुणों के ऊपर। इसलिए हम लोग थोड़ी सी विचार करते हैं कि इसके हाथ का खाना चाहिए, अब संक्रामक रोग है, कलरा तो नहीं है, या प्लेग तो नहीं इसके इसके साथ में है, जब देखते हैं कि सब ठीक है बस ग्रहण कर। इसको तुम लोग भेदभाव मत समझना, नहीं लोग प्यार से के साथ में बीस का प्यारा दे तो मत लो, वो नहीं समझ रहा है ये बीज है, किंतु जिसको ये ज्ञान है वो विचार करके देखेगा, उसको शुद्ध कर लेगा। कोई कोई है जो बीज को हजम कर लेते हैं, हम लोग सब लोग ऐसे भी नहीं हुए हैं जो बीज को हजम कर लिए। मेरा भाई पहले नहीं तो पीछे हो गई, बीज दिया तो उसको ये चरणामृत है, ठीक है, हंसने लगी, सब लोग ऐसे हैं, अभी बीस का ले लेंगे, अभी हरिनाम अभी तक कर नहीं गए, रुचि नहीं है, कुछ नहीं है, पिए तो बस मर जाएंगे।
वैदिक भक्ति करते करते राजनों में भक्ति होता आ जाती है, लेकिन हमारे आचार्यों के अनुसार तो ऐसा नहीं होता,
वो सब ठीक है, किंतु उनको अभी कहने की जरूरत नहीं है, वो वैद्य भक्ति करते चले, उसमें से कोटि कोटि लोगों में से किसी एक को ऐसा सुयोग मिलेगा, ऐसे रसिक वैष्णव के पास में भगवान व्यवस्था कर लेंगे, तब फिर उसको रुचि होगी, लोभ पैदा होगा, तब फिर रागानुगा की तरफ। साधारण रूप में वैद्य भक्ति का ही प्रचार है, रागानुगा भक्ति का प्रचार नहीं। बहुत इन्हें जुने छके हुए लोग, समझते हैं चलनी में, नीचे वाले गिर जाएं, ऊपर में जो रहे, ये सब कथाओं को सुनते हैं, उनको वही अच्छा लगेगा, फिर इधर में उसकी रुचि नहीं है, किंतु उसके जो नियम रूल रेगुलेशन है उसका पालन करता हुआ चले, उसका भाव बदल जाए। कलयुग में डेटी वर्षिप उतनी प्रभावशाली नहीं है जितना नाम है, तो अभी जिनकी रुचि है वो करते हैं, किंतु नाम जरूर करें, और जो नाम करने वाला है नाम कर रहा है उसको विशेष है, समय नहीं है ड्यूटी पूजा अर्चन करने, तो कोई भी उसमें हानि नहीं है, उसको छोड़ करके भगवान का नाम दिन रात कर सकता है, मन ही मन में राधा कृष्ण का वो पूजन अर्चन सब कर लेगा।
महाराज जी, ये गीता ग्रंथ जो है हमारा, उसके बारे में सुना गया है कि भगवान का अपना वचन है, कोई उत्तर नहीं है, किसी ने लिखा नहीं है, तो दिमाग में ये आता है कि जब हम देखते हैं कि भगवान ने जब
व्यास जी ने, वो समाधिस्थ पुरुष हैं, समाधि में सब कुछ भगवान का भी दर्शन करने वाले हैं, ये भागवत में गीता में पुराणों में आया है, और बड़े भारी योगी थे, योगी मैंने क्या, भगवान से उनका योग था इसलिए योगी कहते हैं, जिसको भगवान से योग संबंध नहीं हुआ वो योगी नहीं है, योग माने एक और दो तीन हुआ, योग हुआ ना, तो भगवान के साथ में जिनका चित्त भगवान के साथ में जुड़ा हुआ है उसको योगी कहते हैं, उनमें इतनी शक्ति थी, जो उनका एक शिष्य संजय को शिष्य बनाया, कि धृतराष्ट्र ये सब महाभारत ये देखना चाहता है, इसलिए तुमको इतनी नई शक्ति देता हूँ कि जो कुछ वहाँ पर जो बातें होंगी सब तुमको वहीं पर रह करके जैसे देख रहा है सुन रहा है प्रत्यक्ष तुमको अनुभूति हो, और तुम देखेगा जो कृष्ण ये बातें अर्जुन को कह रहे हैं या सारी सेनाएं कैसे लड़ रही हैं क्या हो रहा है एकदम प्रत्यक्ष देखेगा उसको शक्ति देगी। उनको कहा जैसे अब माँ बाप युग तो वहां होगा तुम यहीं पर रह करके इनको सब सुनाना हस्तिनापुर में, वहां से कम तो 400-500 मील दूर। उस शक्ति से जब महाभारत युद्ध हुआ तो प्रारंभ से ही वो देखने लगे आंख बंद करके, और जैसा हो रहा है जैसा सुन रहे हैं ठीक वही बातें उनको बतला रहे हैं, इसलिए ये उनसे उन्होंने सुना और अर्जुन ने सुना और धृतराष्ट्र ने भी सुना, उन्होंने संजय ने भी सुना, संजय का हृदय साफ था इसलिए उनके हृदय में ये सब चीजें अमित रह गईं ज्ञान, और धृतराष्ट्र के वो सुन रहा है कि लौकिक पदार्थों को ही ग्रहण कर रहा है, वो देख रहा है कि हमारे बेटे मारे गए वो ऐसा हो रहा है ये बस यही देख रहा है, और जो गीता ने जो ज्ञान दिया है वो कहता मैं अच्छा तो है ये किंतु मैं इसको ग्रहण नहीं कर सकता। जनामि धर्मम न च मे निवृत्ति, जनम अधर्मम न च मे प्रवृत्ति, मैं धर्म समझ रहा हूँ गीता का किंतु हमारी इसमें प्रवृत्ति नहीं है, और इसमें अधर्म क्या है ये भी समझ रहा हूँ किंतु हमको उसी में प्रवृत्ति है, मैं क्या करूं। इसलिए कृष्ण ने जो बातें कही वो परम सत्य है। पीछे से व्यास जीव ने स्वयं महाभारत का संकलन किया और उसमें उस गीता को जो अर्जुन को कहा था कृष्ण ने वो सारी चीजें उन्हीं के अक्षरों में शब्दों में उसने दे दी, इसलिए कृष्ण ने व्यास ने स्वयं ही लिखा और संजय के माध्यम से भी जगत को दिया, इस तरह से दोनों बातें ठीक है, और जगत में उसी के द्वारा आया। उन्होंने कहा ये तुमको पहली बार नहीं दे रहा, इसके पहले हमने सूर्य को लाखों कोटि वर्ष पहले दिया था वो लोग भूल गए, इसलिए पुनः उसी ज्ञान को, ये ज्ञान है ये किताब नहीं है, उस ज्ञान को उसमें लिपिबद्ध कर दिया गया है, किंतु पढ़ने से भी वो तो भीतर में आता तो है नहीं, बड़े सौभाग्य से किसी महात्मा पुरुष के द्वारा जो इसका रियलाइजेशन किया है वो कहेगा तो इसको समझेंगे। जैसे मैंने लिखा राम तुम कहाँ हो, कहाँ गए थे, ये लिखा, इसका अर्थ क्या है बतलाइए, तो आप पढ़ेंगे तो क्या इसका भाव निकालेंगे। राम तुम कहाँ गए थे ये लिखा हमने, आपको लिख करके इसका अर्थ क्या है,
शब्दों का अर्थ यही है कि कहां गए थे, वो पूछ रहे हैं।
अच्छा, मैं यदि ऐसे कहूं राम तो कहां गया था, इसका अर्थ क्या होगा?
जैसे पिता पुत्र से पूछ रहा हो या गुरु से पूछ रहा हो।
ये नहीं पूछना नहीं चाहता कि कहाँ गए थे, ये पूछना चाहता क्यों गया। यदि राम तुम कहाँ गया था, मैं जानता हूँ कि कहाँ गया था, तो ये टोन उसमें कौन सा भरा पड़ा है उन शब्दों में, ये कैसे आएगा? गीता तो वही है, कृष्ण का टोन क्या था उसमें भरा हुआ, ये कौन बतलाएगा? जो उनसे सुना हो वो बतलाएगा, व्यास जी सुने हैं वो बतला सकते हैं, अर्जुन बतला सकते हैं। इसलिए टोन पर जाइए, शब्दों पर मत जाइए, नहीं तो आप वंचित हो जाएंगे। अधिकांश लोग 90% लोग शब्दों पर जाते हैं, उस टोन पर नहीं जाते। हम गुरु परंपरा में उस टोन को प्राप्त करते हैं जिसमें भीतर में क्या छिपा है। राम तुम कहाँ गया था, इसका मतलब है कि तुम बुरी जगह गया था, तुम नाइट क्लब में गया था, ये मैं जानता हूं।